एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और ज्ञान गोष्ठी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपकी मेजबान।
और मैं हूं आपका साथी मेजबान। आज हम एक ऐसे विषय में गहराई से उतरने वाले हैं जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं हर रोज हर पल,
पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं, भाषा।
हाँ, और इसके लिए हमारे गाइड होंगे स्टीफन आर एंडरसन, जिनकी एक छोटी सी पर बहुत गहरी किताब है लैंग्वेजेस, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
सच कहूं तो जब मैंने ये किताब देखी, मुझे लगा भाई भाषा के बारे में अब और क्या नया होगा।
सही बात है।
मतलब व्याकरण तो हम सब ने स्कूल में पढ़ाई है, पर ये किताब कुछ और ही है।
आज जब हम एलेक्सा से बात कर रहे हैं, गूगल से रास्ते पूछ रहे हैं, तो ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि इंसानी भाषा असल में है क्या। क्या ये सिर्फ शब्द है या इसके अंदर कोई छिपा हुआ ब्रह्मांड है।
बिल्कुल, और आज हमारा मिशन एक तरह से यही है। हम भाषा से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन हमारे अपने दिमाग के बारे में क्या राज खोलता है।
तो चलिए शुरू करते हैं हमारे गाइड से। ये स्टीवन आर एंडरसन है कौन?
नहीं, वो कोई स्कूल के ग्रामर टीचर जैसे नहीं है। सोचिए, वो येल यूनिवर्सिटी में भाषा विज्ञान के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये समझने में लगा दी है कि भाषा असल में काम कैसे करती है।
अच्छा।
और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो भाषा की मुश्किल से मुश्किल गुत्थियों को एक कहानी की तरह समझाते हैं।
और ये जानना भी जरूरी है ना, कि वो नोआम चॉम्स्की के विचारों से काफी प्रभावित है।
हाँ बिल्कुल, चॉम्स्की ने तो भाषा विज्ञान में क्रांति ही ला दी थी।
उन्होंने ही तो कहा था कि भाषा सीखने की क्षमता हमारे दिमाग में पहले से ही, मतलब जन्म से ही वायर्ड है।
जी,
यही विचार कि भाषा हमारे डीएनए का हिस्सा है, इसी ने मुझे इस किताब की तरफ खींचा।
और यही इस किताब का सबसे बड़ा और कह सकते हैं चौंकाने वाला आइडिया है। एंडरसन कहते हैं कि भाषा सिर्फ बातचीत का एक टूल नहीं है,
उससे कई ज्यादा है।
हाँ, उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये हमारे दिमाग का एक इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नियमों पर चलता है। जैसे चलना या देखना हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है, वैसी भाषा भी है।
वाह, ये तो बहुत बड़ा दावा है। इसका मतलब स्कूल में जो हमें सिखाया जाता है कि ऐसे मत बोलो, ये गलत है, या सही वाक्य तो ये है, एंडरसन उस नजरिए को चुनौती दे रहे हैं।
बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए। एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, वो एक लैंग्वेज पुलिस की तरह है
जो बताता है क्या सही है और क्या गलत।
एग्जैक्टली। लेकिन एंडरसन और दूसरे भाषाविद एक डिस्क्रिप्टिव नजरिया अपनाते हैं। वो एक बायोलॉजिस्ट की तरह है जो बस ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये जो जीव यानी भाषा असल में काम कैसे करती है, बिना कोई जजमेंट दिए।
तो मतलब वो ये नहीं देखते कि हमें भाषा का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, बल्कि ये देखते हैं कि हम असल में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।
बिल्कुल सही,
ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। चलिए इस छिपे हुए ब्रह्मांड में और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहला सवाल, इंसानी भाषा जानवरों की भाषा से अलग कैसे है? तोते भी तो बात करते हैं।
ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और एंडरसन बताते हैं कि इंसानी भाषा में एक जादुई शक्ति है, क्रिएटिव और इन्फिनिट जेनरेटिविटी।
मतलब
हमारे पास शब्द तो सीमित हैं, पर हम उन सीमित शब्दों से अनगिनत करोड़ों नए वाक्य बना सकते हैं और समझ सकते हैं जो हमने पहले कभी सुने भी नहीं।
पर एक मिनट, मैंने तो तोतों के बारे में सुना है जो सैकड़ों शब्द सीख लेते हैं और वाक्य भी बोलते हैं, क्या वो जेनरेटिविटी नहीं है?
ये एक बहुत आम कन्फ्यूजन है। देखिए, एंडरसन समझाते हैं कि तोते नकल करते हैं, वे नियमों को समझकर नए वाक्य नहीं बनाते। वो कल मैंने एक नीला हाथी देखा जैसा वाक्य खुद से नहीं बना सकते।
अच्छा, जब तक उन्होंने इसे कहीं सुना ना हो।
हाँ, लेकिन एक इंसान का बच्चा भी ये कर सकता है। यही वो रचनात्मक शक्ति है जो सिर्फ इंसानों के पास है।
ठीक है, तो ये रचनात्मकता आती कहाँ से है? जरूर इसके पीछे कोई सिस्टम होगा, कोई नियम।
एग्जैक्टली। और ये सिस्टम शुरू होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई से, ध्वनियों से। भाषा विज्ञान में इसे फोनेटिक्स और फोनोलॉजी कहते हैं। जैसे हिंदी में पाल और बाल को लीजिए, दोनों शब्दों में सिर्फ एक आवाज का फर्क है, एक प से शुरू होता है, दूसरा ब से।
और बस उस एक आवाज के बदलने से पूरा मतलब ही बदल गया। तो क्या इसी छोटी सी, मतलब बदलने वाली आवाज को फोनीम कहते हैं?
आपने पकड़ लिया, वही है फोनीम। और यहीं पर एंडरसन एक और बड़ा पॉइंट बताते हैं। हम लिखने पढ़ने को बहुत अहमियत देते हैं ना।
हाँ।
पर असल में भाषा का खेल इन आवाजों से ही शुरू होता है।
अच्छा।
लिखना एक टेक्नोलॉजी है जैसे पहिया, लेकिन बोलना हमारे डीएनए का हिस्सा है।
इसीलिए दुनिया में हजारों भाषाएं हैं जिनकी कोई लिपि नहीं है, पर वो व्याकरण के हिसाब से उतनी ही अमीर हैं जितनी अंग्रेजी।
बिल्कुल
ठीक है। तो ये ध्वनियां तो भाषा के एटम हो गए। अब इन एटम्स से मॉलिक्यूल यानी शब्द कैसे बनते हैं? क्या शब्दों के अंदर भी ऐसी ही कोई छुपी हुई कारीगरी होती है?
बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें मिलता है मॉर्फोलॉजी में, यानी शब्दों की बनावट के अध्ययन में। एंडरसन बताते हैं कि शब्द भी छोटी छोटी अर्थ वाली इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें मॉर्फीम कहते हैं।
मॉर्फीम?
हाँ, जैसे अंग्रेजी का एक शब्द है unbelievably।
हाँ, इसे तोड़ कर देखते हैं। अन मतलब नहीं, बिलीव मतलब विश्वास, एबल मतलब करने लायक, और ली जो उसे एडवर्ब बनाता है। अरे वाह, ये तो एक शब्द नहीं बल्कि चार मतलबों का एक पैकेज है।
बिल्कुल, भाषा की इंजीनियरिंग देखिए, और फिर इन शब्दों के पैकेज को जोड़कर हम बनाते हैं वाक्य यानी सिंटैक्स। और यहाँ एंडरसन का सबसे शक्तिशाली आइडिया आता है, रिकर्शन।
रुकिए, ये तो सिनेमा बहुत टेक्निकल लग रहा है, आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि भाषा एक रशियन डॉल की तरह है, एक गुड़िया के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी।
अच्छा,
वैसे ही हम एक वाक्य के अंदर दूसरा वाक्य फिट कर सकते हैं और ये कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे राम ने कहा
कि सीता ने सोचा
कि दुनिया गोल है,
जो उसे किसी ने बताया था।
हम इसे सच में अनंत तक ले जा सकते हैं। यही वो जादुई ट्रिक है जिससे हम अनगिनत वाक्य बना पाते हैं।
कमाल है,
है ना?
पर सिर्फ वाक्य बना लेना काफी नहीं है,
उनका कोई मतलब भी निकलना चाहिए।
हाँ,
जैसे कुत्ते ने आदमी को काटा और आदमी ने कुत्ते को काटा, शब्द बिल्कुल वही है पर उनकी सरतीब बदलने से मतलब जमीन आसमान का हो गया। ये है सिमेंटिक्स यानी अर्थ का विज्ञान।
लेकिन कई बार तो मतलब शब्दों में होता ही नहीं है, वो तो छिपा होता है।
सही कहा, और यहीं पर भाषा और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर कोई मेहमान आपके घर आकर कहता है यहाँ काफी ठंड है, तो वो आपको मौसम की जानकारी नहीं दे रहा
उसका मतलब है भाई पंखा बंद कर दो, ये तो घर घर की कहानी है। जब मेरी माँ कहती है ये कमरा कुछ बिखरा हुआ नहीं लग रहा, तो उनका मतलब ये नहीं होता कि वो मेरी राय पूछ रही हैं।
बिल्कुल,
उनका सीधा मतलब होता है इसे अभी साफ करो।
एग्जैक्टली, इसे भाषा विज्ञान में इम्प्लिकेचर कहते हैं, कही गई बात के पीछे छिपा हुआ मतलब। ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ ग्रामर नहीं है, ये इंसानी रिश्तों और संदर्भ का खेल भी है। और एंडरसन ये भी बताते हैं कि इस पूरे सिस्टम का हमारे दिमाग में एक फिजिकल बेस है, ब्रोका एरिया, वर्णिकी एरिया।
अच्छा, दिमाग में खास हिस्से हैं इसके लिए?
जी, जो भाषा के लिए ही बने हैं। तो ये कोई अमूर्त विचार नहीं, हमारे दिमाग का एक हिस्सा है।
इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ आ रही है वो ये है कि भाषा एक सामाजिक चीज से कहीं बढ़कर है। ये तो हमारे दिमाग में झांकने की एक खिड़की है, एक तरह का संज्ञानात्मक विज्ञान है।
बिल्कुल, और दूसरा बड़ा संदेश जो इस किताब से मिलता है और जो खास तौर पर भारत में बहुत जरूरी है, वो ये है कोई भी भाषा या बोली आदिम या श्रेष्ठ नहीं होती।
हाँ, ये बहुत होता है। हम अक्सर शहर में किसी की बोली सुनकर उसे गमार समझ लेते हैं या किसी खास लहजे को अशुद्ध मान लेते हैं।
लोग भोजपुरी या हरियाणवी का मजाक उड़ाते हैं जबकि खड़ी बोली को सही हिंदी मानते हैं।
हाँ।
जबकि भाषा विज्ञान की नजर में अमेज़न के जंगल में बोली जाने वाली एक गुमनाम भाषा का व्याकरण भी उतना ही जटिल और नियमबद्ध है जितना ऑक्सफोर्ड में बोली जाने वाली अंग्रेजी का।
हर बोली अपने आप में एक संपूर्ण व्यवस्था है।
बिल्कुल, ये पूर्वाग्रह विज्ञान के खिलाफ है।
और शायद इसी से जुड़ा है यूनिवर्सल ग्रामर का आइडिया कि दुनिया की हजारों भाषाओं के ऊपरी अंतर के नीचे कोई एक साझा ब्लूप्रिंट है जो हम सब इंसानों में एक जैसा है।
सही पकड़ा, यही वो ब्लूप्रिंट है जो हर इंसान के दिमाग में जन्म से होता है। इसी वजह से कोई भी बच्चा बिना सिखाए सिर्फ सुनकर दुनिया की कोई भी जटिल भाषा सीख लेता है।
ये तो सच में एक चमत्कार है।
बिल्कुल,
इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं, जैसे एंडरसन की वो मकड़ी वाली बात।
हाँ, वो तो लाजवाब है। उसका सार ये है कि एक भाषाविद का काम भाषा का आलोचक बनना नहीं है, वो एक जीव विज्ञानी की तरह है जो मकड़ी का अध्ययन करता है। वो मकड़ी को ये नहीं बताता कि उसने अपना जाला गलत बनाया, वो उन सिद्धांतों को समझने की कोशिश करता है जिनसे मकड़ी ने वो जाला बनाया।
वाह, ये तो प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव के बीच के अंतर को इतनी खूबसूरती से बताता है। हम हमेशा लोगों की भाषा में गलतियां ढूंढते रहते हैं जबकि एक वैज्ञानिक का काम है ये समझना कि लोग जैसा बोल रहे हैं वैसा क्यों बोल रहे हैं। एक और विचार जो मुझे बहुत पसंद आया, लिखना एक तकनीक है, लेकिन बोलना हमारी जीव विज्ञान का हिस्सा है।
ये हमें याद दिलाता है कि भाषा हमारी पहचान के कितने केंद्र में है।
और इसी से जुड़ा वो सबसे गंभीर विचार भी है, जब एक भाषा मरती है तो दुनिया को देखने का एक अनूठा नजरिया भी उसके साथ मर जाता है।
ये बहुत गहरी बात है,
है ना? हर भाषा दुनिया को अलग तरह से देखती है, उसके पास अपने अनोखे मुहावरे और विचार होते हैं। जब वो भाषा खत्म होती है तो इंसानी ज्ञान का एक पूरा अध्याय हमेशा के लिए खो जाता है। तो इन सब विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? सबसे पहला तो मेरे लिए है भाषाई पूर्वाग्रह से मुक्ति।
हाँ।
ये समझने के बाद कि कोई भी बोली या लहजा किसी की बुद्धि का पैमाना नहीं है, हम लोगों के प्रति ज्यादा सहनशील बन सकते हैं, ना?
बिल्कुल। किसी के अलग तरह से हिंदी या अंग्रेजी बोलने पर उसका मजाक उड़ाना वैज्ञानिक रूप से मतलब बेवकूफी है।
हाँ।
और दूसरा, ये हमें बेहतर संचारक बनाता है जब हम समझते हैं कि शब्दों के पीछे इरादे, संदर्भ और वो इम्प्लिकेचर भी होते हैं, तो हम गलत फहमियों से बच सकते हैं।
हम ये समझ पाते हैं कि सामने वाला जो कह रहा है उसका असल मतलब क्या हो सकता है।
सही।
और जैसा कि हमने शुरू में कहा था, टेक्नोलॉजी को बेहतर ढंग से समझना। जब हम गूगल असिस्टेंट या सिरी को कोई मुश्किल बात समझा नहीं पाते तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, हम समझेंगे कि वे सिर्फ डेटा और पैटर्न पर चल रहे हैं।
जबकि हमारी भाषा में संदर्भ है, दुनिया का ज्ञान है और वो जादुई रिकर्जन है
जिसकी नकल करना लगभग नामुमकिन है,
जिसे हम हर पल इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं, वो असल में एक अजूबा है। ये हमारे दिमाग की कारीगरी का सबसे बड़ा सबूत है। हर बार जब हम एक साधारण सा वाक्य भी बोलते हैं तो हमारा दिमाग अनजाने में ही सैकड़ों जटिल व्याकरणिक नियमों का पालन कर रहा होता है।
ये एक चमत्कार से कम नहीं है।
बिल्कुल।
और मेरे लिए सबसे यादगार बात भाषाई विविधता का संरक्षण है। इसका एक अद्भुत उदाहरण है निकारागुआ की सांकेतिक भाषा।
अच्छा, वो क्या है?
1980s के दशक में निकारागुआ में बधिर बच्चों को पहली बार एक स्कूल में इकट्ठा किया गया। उनके पास कोई औपचारिक साइन लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन बिना किसी बाहरी मदद के उन बच्चों ने आपस में संवाद करने के लिए खुद ही एक पूरी तरह से नई व्याकरण के नियमों वाली भाषा बना ली।
अरे वाह।
ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि भाषा बनाना इंसान की एक जन्मजात और बहुत गहरी जरूरत है। हमें इस विविधता को खोने नहीं देना चाहिए।
बहुत सुंदर बात कही।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।